تفسير: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. اور تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے، بشارت لیے ہوئے. قالوا، انہوں نے کہا، سلاما، تم پر سلامتی ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور دراصل یہ حضرت لوط اور ان کی قوم کا جو قصہ ہے اسی کا یہ حصہ ہے. اور حضرت لوط کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد، یہ بھائی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو ان کی طرف جو ہے وہ فرشتے بھیجے گئے. اور آپ دیکھیں کہ پانچ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پہ پتہ کیا چلتا ہے کہ آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے. تو رسولنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خوشخبری لے کر آئے یہ تین فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. امام قرطبی نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے بشکل انسانی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جو ہے وہ جواب دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ تعداد 9 تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ 11 تھی، اور یہ جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، لیکن راستے میں جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے اور ان کو کیا خوشخبری دی؟ کہا کہ سب سے پہلے کہا کہ قالوا سلاما، کہ تم پر سلامتی ہو. اب آپ دیکھیے کہ سلامتی جو ہے اس سے کیا مراد ہے نا؟ یہ بات پتا چلتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ جب وہ آپس میں ملیں تو سلام کریں، اور آنے والے مہمان کو بھی اس میں نا پیش قدمی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے کہ آنے والا مہمان سلام کرے اور گھر والے فوراً اس کا جو ہے وہ جواب دیں. ویسے تو ہر قوم، ہر ملت میں یہ کسٹم ہے، یہ رواج ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو کچھ کلمات کہتے ہیں. مگر اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور اس کے لیے ہمیں مسنون کیا ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، پھر وبرکات. تفسیر: وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے، بشارت لیے ہوئے. قالوا، انہوں نے کہا، سلاما، تم پر سلامتی ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے، اور دراصل یہ حضرت لوط اور ان کی قوم کا جو قصہ ہے اسی کا یہ حصہ ہے. اور حضرت لوط کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد، یہ بھائی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو ان کی طرف جو ہے وہ فرشتے بھیجے گئے. اور آپ دیکھیں کہ پانچ آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پہ پتہ کیا چلتا ہے کہ آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لیے ہوئے. تو رسولنا کا لفظ استعمال ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خوشخبری لے کر آئے یہ تین فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. امام قرطبی نے یہ بات کہی ہے، اور انہوں نے بشکل انسانی آ کر ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جو ہے وہ جواب دیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ تعداد 9 تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ 11 تھی، اور یہ جا رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، लेकिन रास्ते में जाते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ठहरे और उनको क्या खुशखबरी दी, कहा कि सबसे पहले कहा कि कालू सलामा, कि तुम पर सलामती हो। अब आप देखिए कि सलामती जो है इससे क्या मुराद है ना। ये बात पता चलती है कि मुसलमानों के लिए भी ये सुन्नत है कि जब वो आपस में मिले तो सलाम करें, और आने वाले मेहमान को भी इसमें ना पेशकदमी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाला मेहमान सलाम करे और घर वाले फौरन उसका जो है वो जवाब दें। वैसे तो हर कौम हर मिल्लत में ये कस्टम है, ये रिवाज है कि मुलाकात के वक्त एक दूसरे को जब देखते हैं खुश होते हैं तो कुछ कलमात कहते हैं, मगर इस्लाम की तालीम जो है वो बेनजीर है, बेमिसाल है, और उसके लिए हमें मसनून क्या मिलता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, है ना, फिर वबरकात। तो इस बात से कि फरिश्तों ने कहा कि कालू सलामा, तो क्या बात पता चलती है कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती भेजी, और भेजने वाले कालू से क्या पता चलता है कि ये कुछ तादाद में थे, एक नहीं था ज्यादा थे। और दूसरी यहां बात ये पता चलती है कि इस्लाम जो है इसमें बड़ी अहम तालीमात दी गई हैं, और इसकी जो डीलिंग का शोबा है, इखलाक का, किरदार का, ये भी बहुत बेनजीर और बेमिसाल है, बेहतरीन है। और मसनून जो हम कलमात कहते हैं जब किसी को मिले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, है ना, और अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो क्या कहना है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर कोई कहे कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो आप क्या जवाब देंगे, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अगर कोई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे तो आप क्या कहेंगी, वालेकुम, जो कुछ तुमने कहा वो सब कुछ तुम पर, क्योंकि उसने पहले ही मुकम्मल जो है वो बात आपको कही। तो दरअसल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या जो भी हम सलाम करते हैं इससे, इसमें जो है दो तीन बातों का खासतौर पर इजहार किया जाता है, जिसमें सबसे पहली बात ये कि सलाम जो है ये अल्लाह का जिक्र है ना, कि अल्लाह की तरफ से रहमत बरकत की दुआ दी जाती है। दूसरी बात ये कि आप ऐलान करते हैं कि आपकी इज्जत, आपका माल, आपका सब कुछ मेरी तरफ से महफूज है, आप पर सलामती पीस है, है ना, सलामती यानी गोया के जान माल इज्जत की सलामती की आप जमानत देते हैं। और तीसरी बात यह कि आप उनको एक दुआ देते हैं। तो हमें जब किसी को मिले तो गुड मॉर्निंग और हेलो हाय इस तरह के कलमात की बजाय सलाम को रवाज देना चाहिए, और अपने बच्चों को भी खास तौर पर बताना चाहिए। बाहर के ममालिक में जो भी लोग रहते हैं मुसलमान, उनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी अपनी कदरें हैं, अपनी वैल्यूज हैं, अपना इस्लामी कल्चर है, उसकी हिफाजत भी करें, उसको जिंदा भी करें और उसको कायम दायम करें। तो उसके लिए अपने ऊपर बच्चों पर निगरानी की जरूरत है कि वो बच्चे क्या कहते हैं। दूसरी बात आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं काला सलामुन, तो उन्होंने भी जवाब दिया है, तो उन्होंने फौरन जो है वो कहा कि सलाम। अब आप देखें कि क्या मतलब है, गोया कि वो भी उनको उनके सलाम का जवाब देते हैं। तो अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना चाहिए, बाज़ सर हिला देते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मुंह से सलाम करना चाहिए और अगले सुनने वालों को भी उसका जरूर जवाब देना चाहिए, इससे मोहब्बत पैदा होती है आपस में। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो क्या है, फमा लबिसा, ज्यादा देर न गुजरी थी, अंजा अब इजलिन हनीज, के इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा लेकर आया, एक रोस्टेड जो बछड़ा था रोस्ट किया हुआ वो लेकर आ गए। यहां पर यह बात हमें पता चलती है कि मेहमानी के आदाब क्या हैं, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा तकल्लुफात पे नहीं पड़ते, जो चीज भी मुयस्सर हो फौरन मेहमान की खिदमत में पेश करनी चाहिए। और चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गाय बैल और जानवर थे, तो इसलिए बछड़ा जिबा करके फौरी तौर पर गोश्त उसको तल के उसको मेहमान के सामने पेश कर दिया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि मेहमान नवाजी जो है ये भी बहुत पसंदीदा है इस्लाम में, और दूसरी बात ये पता चलती है कि मेहमानी के जो आदाब हैं उसमें तकल्लुफ भी नहीं करना चाहिए और देर भी नहीं करनी चाहिए। तकल्लुफ में बाज लोग क्या करते हैं कि पूछते ही रहते हैं कि अच्छा आप ठंडा लेंगे कि मीठा गर्म लेंगे, आप नमकीन लेंगे कि मीठा लेंगे। तो अगला कहता है कि अब आधा घंटा या 20 मिनट हो गया, अब उसके जाने का वक्त हो जाता है, तो अच्छा चलो फिर आइंदा सही, है ना, तो उठ कर चला जाता है। तो ठंडा और गर्म जो है वो पूछने की बजाय, मतलब अगर पूछे भी हैं तो लेकिन देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर का उस्वा क्या है, फमा लबिसा, कि ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, जल्दी वो भुना बछड़ा लेकर आए ना, तो जल्दी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी पता चलती है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ना तकल्लुफ करते हैं कि फलां रेस्टोरेंट से मंगवा के देंगे, फ्रीजर के अंदर जो चीज है उसको पहले डी फ्रीज करेंगे फिर उसको बना कर देंगे। तो वक्त की भी कदर करनी चाहिए, जो कुछ मुयस्सर है और जितना टाइम है। अगर तो कोई आ गया है उसने रात रुकना है, कुछ घंटे रुकना है, तो हो सकता है बहुत एहतमाम से तैयारी कर ले। अगर पता है कि मतलब फौरन उसने चले जाना है, थोड़ी सी देर है, तो जो कुछ मुयस्सर है, जो कुछ मुयस्सर है, फ्रूट सामने पड़ा हुआ है, फ्रिज में जो चीज नजर आ रही है, चाय की कप बन सकता है, जो कुछ मुयस्सर है, जो अवेलेबल है, कोई कुकीज है, कुछ भी, जो भी रोटी, इसी तरह खाने का वक्त है, भूख का वक्त है, जो मुयस्सर है, कल की दाल ही पकी हुई है, साथ में रोटी गर्म कर ले, दही रख दे, चटनी रख दे, तो दे दे, है ना, खुद भी खा ले, उनको भी दे दे। बाज़ औक़ात रोटी ही की तलब होती है, ढेरों दूसरी चीजें जमा कर रहे होते हैं तकल्लुफ में, लेकिन अगले शख्स को रोटी की तलब होती है। जो कुछ मुयस्सर हो अपनी जिंदगी से ना, ये कि दूसरा क्या कहेगा, हाय मेरी क्या इज्जत बनेगी, इसको तो भुला दे। अल्लाह की नजरों को महसूस करना चाहिए कि मैं ये जो भी अमल कर रही हूँ रब की रजा के लिए कर रही हूँ, और ये अल्लाह ताला यही मेरी बसात है ना, ये जो कुछ मेरे पास है इसमें मैंने कुछ कमी नहीं की। ठीक है, इसी तरह मेहमान नवाजी के बारे में ये आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले इंसान है जिन्होंने दुनिया में मेहमान नवाजी की रस्म जारी की। ये इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इनका ये मामूल था कि कभी तनहा नहीं खाते थे खाना, हर वक्त किसी दूसरे आदमी की तलाश करते कि कोई मेहमान आ जाए तो इसके साथ खाएं। इमाम कुर्तुबी ने बाज इसराइली रवायात से नकल किया है कि एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने के वक्त मेहमान की तलाश शुरू की, एक अजनबी आदमी मिला। जब वो खाने पर बैठा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह कहो। इसने कहा मैं जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है और क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको दस्तरखान से उठवा दिया। जब वो बाहर चला गया तो जिब्राइल अमीन आए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तो इसके कुफर के बावजूद सारी उम्र उसको रिस्क दिया और आपने एक लुकमा देने में भी बुखल किया। ये सुनते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसके पीछे दौड़े और इसको वापस बुलाया। इसने कहा कि जब तक आप इसकी वजह ना बताएं कि पहले निकाला क्यों था मुझे और अब फिर बुला क्यों रहे हैं, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाकया बताया कि वजह बताई सारी। इस पर कहते हैं कि वो मुसलमान हो गया। उसने कहा कि वो रब जिसने ये हुक्म भेजा है बड़ा करीम है, मैं इस पर ईमान लाता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ गया और मोमिन होकर बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया। तो अब आप देखिए कि इससे भी जो बात पता चलती है वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे और अल्लाह ताला के अहकामात पर सबसे आगे बढ़कर जो थे वो अमल करने वाले थे। और फिर आप ये देखें कि जो ही मेहमान उनके सामने आते हैं वो सलाम करते हैं, वो उनको सलाम का जवाब देते हैं, तो फौरन जो है वो एक भुनावा बकरा जो है वो इनके सामने पेश कर देते हैं। अब अगली बात, एक और हुक्म हमें पता चलता है, फलम्मा रआ अईदियहुम, फिर जब उनके हाथों को देखा और उनके हाथों को क्या देखा कि ला तसिलु इलैही, कि वो नहीं पड़ते खाने की तरफ, कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते, कि मेहमानों के सामने खाना भी रख दिया है और मेहमान खाना खा ही नहीं रहे, नकिराहुम, तो इनमें अजनबियत पाई। नकिराहुम जो है इसको आप इस बात से याद रखें कि नकिरा मुनकर से है इनकार, तो नकिरा क्या है कि इनकार उसने महसूस किया, हुम उनके अंदर, हम कौन है, जो फरिश्ते आए थे, और नकीरा महसूस किसने किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, कि इसने इनमें अजनबियत पाई। तो इसका तर्जमा आप क्या करेंगे कि इनसे वो मुश्तबे हो गया। जैसे बात ये जैसे जो है वो तदब्बुरे कुरान में अमीन आसन इस्लाही साहब कहते हैं कि इसने इनमें अजनबियत पाई। तफहीमुल कुरान में सैयद अबूल्ला मौदूदी जो है वो ये कहते हैं कि वो इनसे मुश्तबे हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो तहसीरुल कुरान में मौलाना अब्दुर्रहमान कैलानी जो है वो ये कहते हैं कि तो उन्हें मुश्तबे समझा। फिर इसी तरह जो है वो आसनुल बयान में जो है वो तर्जमा है मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का, और वो ये कहते हैं कि तो इसने उन्हें अनजान पाया। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो मारफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि तो खटका इनसे। समझ आई? तो असल बात यह है कि आप नकिरा को याद रखें कि नकिरा मुनकिर से है, और आप ये बात समझ ही चुकी हैं कि मुनकिर किसे कहते हैं, इनकार से है ना, कि मुनकिर हर वो चीज जिसे अकले सलीम तस्लीम ना करे या उसका इनकार करे या मुआशरा उसे कभी ख्याल करे, है ना, मुनकिर मारूफ इसका ऑपोजिट है। तो ये है कि आप जब जब रूट वर्ड पढ़ते हैं तो उससे उसकी बेस को अपने दिल में जहन में बिठा लें, तो कोई भी तजवा आपके सामने आए आपको फिर उसकी समझ आए। तो बहरहाल बात क्या है कि जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं उठ रहे जो मेहमान आए हैं, तो आप उनकी तरफ से मुश्तबे हुए, या फिर ये है कि आपने उनमें अजनबियत महसूस की। इससे ये बात भी पता चलती है कि फरिश्ते, क्योंकि वो फरिश्ते थे और इंसानी शक्ल में थे, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो ये नहीं पता था ना। तो जब फरिश्तों ने अपने हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दाल में कुछ काला महसूस हुआ, आपको उनसे खौफ आने लगा। और डर की वजह क्या थी? वह औजसा मिनहुम खीफा, वह औजसा और महसूस किया इनकी तरफ से खौफ, यानी दिल में इनसे खौफ महसूस किया। और ये खौफ महसूस करने की वजह क्या थी कि इन लोगों में ये दस्तूर था कि जो मेहमान खाना ना खाता तो उसके मुतल्लिक ये समझा जाता ये किसी बुरी नीयत से आया है, मुमकिन है ये वजह हो, है ना। और या ये कि चूंकि इंसान है उसको तो भूख लगती है, मुसाफिर है, मेहमान बनकर आया है तो वो तो खाना खाता है, और इनका हाथ खाने की तरफ ना बढ़ना तो और इस वजह से उनको जो है वो खौफ महसूस हुआ हो कि मेजबान जो है परेशान है कि ये खाना जो है वो क्यों नहीं खा रहे। अच्छा, इसमें भी आप देखें कि मेहमानी के आदाब में ये भी एक अदब है कि मेहमान के सामने जो कुछ पेश किया जाए तो जो मेजबान है ना वो ये भी नोट करे, ये भी देखे कि मेहमान खाना खा रहा है कि नहीं, यानी खाना रख कर उसके सामने फारिग ना हो जाए, बल्कि उसकी दिलजोई के लिए उसे कहे कि आप खाएं, आप क्यों नहीं ले रहे, है ना। तो गोया के यानी उसका दिल नहीं चाह रहा, वो उसको कबूल क्यों नहीं कर रहा, उसको कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो मेहमान जो है खातिरदारी में ये भी आता है कि दस्तरखान चुन देने के बाद उसको इसरार भी करना, उसको तवज्जो भी दिलाना, और ये भी आता है कि आप खुद उसके साथ शामिल हो जाएं, कि बाज़ औक़ात आप खाते हैं तो उसको थोड़ी झिझक शर्म उसकी हट जाती है तो वो भी साथ जो है वो शामिल हो जाता है। अच्छा, इसमें लेकिन ये मतलब नहीं है कि जब आप मेहमान को देख रहे हैं कि नहीं खा रहा तो आप उसे कहते हैं खाएं, अब उसको ताकते ही रहें कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, तो परेशान होकर फिर वो ले ही ना, और ना, इसका ये मतलब भी नहीं है। मसलन एक बड़ा खूबसूरत वाकया है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि हशाम बिन अब्दुल मलिक के दस्तरखान पर एक रोज एक बद्दू आया, और वो जो बद्दू अराबी था ना उसके लुकमे में बाल था। अमीरुल मोमिनीन हशाम ने देखा तो बताया, अराबी फौरन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि हम ऐसे शख्स के पास खाना नहीं खाते जो हमारे लुकमों को देखता है, यानी मैं खाना खा रहा हूँ बाल मेरे लुकमे में और दूसरा बंदा देख रहा है। तो वो बद्दू जो था वो उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा कि तुम मेरे लुकमों को गिन रहे हो ना। तो इसका भी फिर क्या मतलब है कि तवज्जो दिलानी है लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी होने देना है ताकि वो अच्छे से जो है वो खा सके। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि जब वो खौफजदा थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो दिल के अंदर खौफ था, चेहरे से जाहिर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन कालू वो बोले ला तखफ इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत। तो उस वक्त जो है फरिश्तों ने कहा डरो नहीं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जो है वो भेजे गए हैं। तो आप देख लीजिए कि या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसलिए डरे कि इनकी पता नहीं नीयत क्या है, क्योंकि बाज़ूका जो लोग नाराज होते हैं, कोई दुश्मनी होती है किसी के घर, कहते हैं इसका खाना पीनी हम खाना पानी हम पर हराम है। क्या कहते हैं कि इनका खाना पानी हम पर हराम है, तो खाते नहीं है। और या फिर ये है कि फरिश्ते जो अलन ऐलान आते हैं ना, अलानिया इंसानी शक्ल में, तो ये गैर मामूली होता है आना। तो बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि उन्हें ये अंदाजा हो गया कि ये इंसान नहीं है, इसलिए ये खाना नहीं खा रहे, और इस वजह से वो खौफजदा हो गए, वो ताड़ गए कि ये फरिश्ते हैं। और खौफजदा क्यों हुए कि मुझसे, मेरे घर वालों से, मेरी बस्ती से कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया जिसकी गिरफ्त में अल्लाह ताला ने ये फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेज दिया है ना? तो ये वजह थी। और फरिश्तों ने जवाब दिया कि आप डरे नहीं, हम तो आपके रब के भेजे हुए रसूल हैं। और साथ ही ये भी बता दिया कि आप गम ना करें, आपकी तरफ नहीं भेजे गए, इला कौमे लूत, कौमे लूत की तरफ हमें भेजा गया है। वम्रातुहू काइमतुन, और इनकी बीवी खड़ी थी। अब यहाँ पे जो खड़ी थी, इसका जो तर्जमा मुफस्सरीन ने किया है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि मेहमान नवाजी में वो आपकी मदद कर रही थी, वो चीजें देती जा रही थी, और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे जो थे वो रखते जा रहे थे। और दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी जो बीवी थी वो किसी काम से, मतलब किसी भी काम से वो आपके पास जो थी वो खड़ी थी। तो आपकी बीवी आपके पास ही जो थी वो खड़ी थी। फिर इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे बीवी से कौन सी बीवी मुराद है, हजरत सारा, हजरत सारा जो है वो मुराद हैं। वो पास खड़ी थी, फदाहिकत, बस वो हंसी, फबशर नाहा, फिर हमने उसको खुशखबरी दी। इससे ये पता चलता है खुशखबरी से पहले ही वो हंस पड़ी, फदाहिकत। वो क्यों हंसी, जब उसको ये पता चला कि जो फरिश्ते हैं उर्सिलना इला कौमे लूत, हमारी तरफ नहीं भेजे गए, किसी दूसरी कौम की तरफ भेजे गए, तो जैसे जान में जान आ जाती है कि चलो हम पे तो कोई मुसीबत और परेशानी नहीं आई है ना। तो बाज लोग ये कहते हैं कि इस वजह से वो हंसी, और बाज लोग ये कहते हैं कि वो इस वजह से हंसी, फदाहिकत फबशरनाहा बेइसहाक व मिन वराए इसहाक याकूब, कि जब उनको औलाद की खुशखबरी दी गई तो वो इस वजह से वो हंस पड़ी। तो या तो आगे वाले से आप इसका सिलसिला जोड़ेंगे तो खुशखबरी सुनकर वो हंस पड़ी, और या ये है कि आप पीछे के से उसको जोड़ेंगे तो फिर वो जो है वो हंस पड़ी। तो हजरत सारा जो हैं, आप इस बात को भी याद रखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो औलाद थी, वो साहिबे औलाद थे, क्योंकि दूसरी बीवी हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, लेकिन हजरत सारा जो थी उस वक्त तक बे औलाद थी। और कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त जो है वो 100 साल, और हजरत सारा की उम्र कहते हैं कि बास कहते हैं कि 90 यानी 90, और बास कहते हैं कि 99 यानी आपकी बड़ी उम्र जो है वो उस वक्त तक हो चुकी थी। फबशरनाहा, हा की जमीर ये बताती है कि ये औलाद की खुशखबरी बीबी सारा को दी गई। क्यों, बीवी के औलाद नहीं थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तो औलाद थी ना। तो इसलिए ये खुशखबरी हजरत इब्राहिम के मुकाबले में सैयदा सारा के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। और खुशी किस चीज की थी कि आपके यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम इसहाक होगा। और फिर ये भी बताया कि इसहाक के बाद इससे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा उलुल अज़्म पैगंबर पैदा होगा। और फिर आप देखें कि फिर उनकी नस्ल में बनी इसराइल कितने पैगंबर और कितना कुछ अल्लाह ने जो है फिर वो नवाजा, वो सारी बात भी। तो ये खुशखबरी सुनकर वो उनकी हंसी निकल गई। अब उनकी हंसी क्यों निकली, कालत या वही लता, वो बोली कि हाय मेरी बर्बादी, वो बोली कि ए है क्या, जैसे हैरत में मुंह से कोई जुमला निकल जाए, है ना। तो वो उस वक्त फौरन बोल उठी, आ अले दू क्या मैं जनूंगी, आ अले दू क्या मैं जनूंगी, ये हमजा बशकल अलिफ जो नजर आ रहा है ये मैं के लिए है, जैसे आ अले दू, आ के माने क्या है, क्या अले दू मैं जनूंगी, अगर होता आ कुलू मैं खाऊंगी, है ना, अशरबू मैं पीऊंगी, अदखुलू मैं दाखिल होंगी, है ना। तो फेल मजारे के शुरू में चार हरफ आप याद रखें, या ता अलिफ नून यतान, जब ये शुरू में आते हैं, अलिफ जब आता है तो मैं के मानी देता है मर्द और औरत दोनों के लिए, मुतकल्लम का सीगा होता है, वाहिद मतलब वाहिद और मुखातिब जो होता है कि मैं जनूंगी, और अगर नून आएगा तो क्या है, हम के लिए आता है, जैसे ना कुलू हम खाते हैं, ना दुखुलू हम दाखिल होते हैं, नशरेबू हम पीते हैं, नून शुरू में आ गया ना, और या और ता जो है या वो के लिए आता है ना, या दुखुलू वो दाखिल होता है, तदखुलू तुम दाखिल होते हो। तो फेल मजारे के शुरू में यतान जब आते हैं तो इस तरह मानी देते हैं, और अगर माजी के आखिर में आए, अगर यही अल्फाज आखिर में आते हैं वर्ब के तो माजी के आखिर में आते हैं ना, जैसे आप देखें कि आमना और आमनू, वहां पे वो आ गया आखिर में, तो फेल माजी के आखिर में आपको नजर आएंगे। और इसी तरह जो है आप देखिए दराबा दराबा दराबू, फेल माजी के आखिर में आपको नजर आ रहा है ना वो, और अलिफ भी नजर आ रहा है, दखलू, और आप दखल ना नून आखिर में नजर आ रहा है, तो फेल मजारे के आखिर में नजर आता है ना कि वो औरतें दाखिल हुई। तो बहरहाल मानी में थोड़ा बहुत फर्क है, मजीद आप बाद में पढ़ सकती हैं। यहाँ पे वो अपने बात कहती हैं कि क्या मैं पैदा करूंगी, मैं ये जनूंगी, या मेरे यहाँ औलाद होगी, वह अना उजूजुन और मैं बूढ़ी हूं, मैं तो अब आजिज हूं, क्योंकि हजरत सारा जो है इनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी, और शोहर भी कैसा था, वहाज अबाली शेखा, और मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी भी जो थे वो उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी। और आप देखें कि जो है वो जवानी में औलाद होती है ना, बहुत बुढ़ापे में जो है वो औलाद जो है वो नहीं हुआ करती ना, लेकिन जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है वहाजा बाली शेखा, कि मैं भी बूढ़ी और मेरा शोहर भी बूढ़ा, और आप खुशखबरी सुना रहे हैं औलाद की, तो ये सुनकर हंसी आ गई। बाज़ुकात कोई जो है वो नामुमकिनुल वजूद बात सुनने में मिले, कोई एकदम ऐसी बात कि इंसान बहुत ही मायूस हो चुका हो, तो कोई खुशखबरी मिले तो इंसान को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इंसान जो है वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है तो हंसने लगता है। तो बहरहाल इस तरह हजरत सारा जो थी वो हंसने लगी कि अच्छा तो क्या मुझे भी हमल करार पा सकता है, क्या मेरे यहाँ भी औलाद हो सकती है। तो ये उनका हंसना ताज्जुब के लिए था, और अगरचे इसमें दिल की खुशी भी शामिल थी। फरिश्तों ने कहा इन्ना हाजा लशयइन अजीब, ये बल्कि फरिश्तों ने नहीं कहा, उन्हीं की बात चल रही है हजरत सारा की, वो कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, इन्ना हाजा लशयइन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात है कि इतना बुढ़ापा और जवानी में तो हुई नहीं और अब मेरे यहाँ औलाद होगी। पालू फरिश्ते बोले अता जबीना, कि क्या तुम ताज्जुब करती हो, हैं क्या तुम ताज्जुब करती हो, मिन अम्रिल्लाही अल्लाह के हुक्म पर, कि आम तौर पे तो ऐसा नहीं होता कि इतने बुढ़ापे में औलाद हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ऐसा होना कोई भी महाल नहीं है। तो ये जो तुमको खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह तुम्हें अब औलाद देगा, तो तुम तो एक मोमिना हो, ईमान लाने वाली हो, तो एक मोमिन होकर फिर अल्लाह के हुक्म पर तुम ताज्जुब करती हो, अताजबीना मिन अम्रिल्लाही रहमतुल्लाह, कि तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो। फरिश्ते बोले कि अल्लाह की रहमत है, रहमतुल्लाही अल्लाह की रहमत है, वबरकातुहू और उसकी बरकत है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, बरकातुहू बरकात, बरकत नहीं बरकातुहू, तो उसकी बरकतें हैं, अलैकुम अहलल बैत, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो अब यहां पर भी आप देख लीजिए कि हजरत बीबी सारा को खुशखबरी दी गई और उनको अहले बैत में शामिल किया गया है ना, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों तुम पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। तो यहां पर ये पॉइंट भी समझ लेने के काबिल है कि हजरत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं, जैसे बीवी है, तो ये कौन थे? अहले बैत में आते हैं, क्योंकि बाज लोग जो हैं वो बीवी को बैत में अहले बैत में शामिल नहीं करते। आज मुसलमानों में भी एक ग्रोह पैदा हो चुका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को, अजवाज मोहतरात को अहले बैत में शामिल नहीं करता, बल्कि जो है वो उनको अहले बैत में से निकाल देता है। तो ये चीज जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बीवी आती है, फिर उसके बाद आल औलाद आती है। तो यहां पर भी ये बात है कि उन्होंने जो है वो कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं, अलैकुम तुम पर अहले बैत अल्लाह की रहमतें भी हैं और अल्लाह की बरकतें भी हैं। तो यहां पर ये बात भी पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बहुत ही मोहब्बत करने वाले थे। तो फरिश्ते जो हैं क्या करते हैं कि उनकी उनको इत्मीनान दिलाते हैं, उनको खुशखबरी देते हैं, हजरत सारा की जो हैरत है उसको जो है वो दूर करते हैं। और असल बात क्या है कि इंसान जो है जब कोई चीज थोड़ा अरसा नहीं मिलती ना, और इंसान मायूस होने लगता है कि बीमारी है तो ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं, सेहत नहीं मिल रही तो पता नहीं हम कभी सेहतमंद होंगे कि नहीं, जॉब नहीं मिल रही तो कभी जॉब मिलेगी कि नहीं, पास नहीं हो रहे इम्तिहान में तो पता नहीं पास होंगे कि नहीं, है ना। और इसी तरह जो है वो कोई काम वक्त पे नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी नहीं कर पाते, पता नहीं हम कर सकेंगे कि नहीं। तो असल बात क्या है कि कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी की दोस्तों में, किसी के रिश्तेदारों में शादी को 19 साल हो चुके थे और काफी उम्र हो गई थी, औलाद नहीं हुई। तो उसकी फिर शौहर की जब दूसरी शादी की, तो जो दूसरी बीवी थी उससे पहले पहली को औलाद हो गई, और फिर उसके बाद दूसरी भी, दूसरा भी एक फिर बेटी पैदा हुई। तो अब तो मसला ये हो गया कि 1 साल गुजरने पे, 2 साल गुजरने पे भी तशवीश की लहर दौड़ने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो मायूस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के लिए जो सिफात इस्तेमाल की गई है, इन्नहु हमीदुम मजीद, और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। आप देख लीजिए कि क्या बात बताना मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी तारीफ कैसी है, कि वो जो है वो खुद काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला जो है वो बड़ी शान और शौकत वाला है, मजीद। तो जब अल्लाह की ऐसी सिफात हैं तो अल्लाह जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चाहे उसको जो है वो नवाज दे। तो इसके लिए कभी भी जो है वो मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन सिफात का इस्तेमाल करना जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत जो है उस पर दलालत करता है। तो अल्लाह अल्लाह तो कुन कहे तो फयाकून जो है वो हो जाता है। और दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला की जात जो है ना, उसकी कुदरत के करश्मे कायनात में बिखरे पड़े हैं। वो चाहे तो किसी को जवानी में ना दे, चाहे तो किसी को बुढ़ापे में दे दे। तो ये है इन्नहु हमीदुम मजीद। तो ये पहले से इसका लिंक है कि वो जात, कोई उसकी तारीफ करे ना करे, खुद काबिले सताइश है और उसके साथ साथ वो बड़ी शान और शौकत वाला है, बड़ी कदरों मंजिलत वाला है। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम अर्रऊ, फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई, यानी उनकी जो परेशानी थी कि फरिश्ते उनकी कौम की तरफ तो नहीं भेजे गए और क्यों फरिश्ते जो हैं वो आए हैं, अब उनकी ये घबराहट जब दूर हो गई, वजा अतुल बुशरा, और जब औलाद की बशारत उसको मिल गई, यानी खुशखबरी से उसका दिल खुश हो गया, युजादिलुना फी कौम लूत, अब उसने जो है कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा करना शुरू किया। अब आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खौफ खुशी में तब्दील हो गया, अब वो फरिश्तों से बहस करने लगे। यहाँ पे ये जो युजादिलुना है ना, ना की जमीर जो है ये फरिश्तों के लिए आई है, हमसे मुराद कौन है? फरिश्ते हैं। कि अब वो कौम लूत के बारे में हमसे जो है वो झगड़ा करने लगा। आप यहाँ पे ये बात देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, ये बात पता चलती है कि मुजादला जो है कि हुस्ने अदब, मोहब्बत, एतमाद, अपनी बात पर इसरार करना और बार बार इल्हा के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, अब इतना नहीं कि इतनी अच्छी खबर मिली है तो अपने अपने यहाँ दूसरी बीवी से नस्लों में पैगंबरी की तो बस उसी पे खुश होकर ढह जाएं या बैठ जाएं, नहीं, बल्कि क्या है कि अब उनको अपनी कौम लूत की फिक्र होने लगी और अल्लाह ताला से इसके सिलसिले में सिफारिश करने में लग गए और अपनी बात मनवाने में सारे जतन कर डाले, है ना, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको जो है वो सजा दी जाए। इस सिलसिले में आप देखें कि उनका मजादला, इसका अंदाजा करने के लिए आप जो है वो तुरात में इसकी तफसील देखें। पैदाइश बाब 18 23 से 32 तक लिखा है कि क्या हुआ कि इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा, तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हिलाक करेगा? शायद इस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हिलाक करेगा और इन 50 रास्तबाजों की खातिर जो इसमें हों इस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे बईद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझसे बईद है, क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया, अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिलें तो मैं इनकी खातिर इस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया, कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जरूरत की, अगरचे मैं राख और खाक हूं, शायद 50 रास्तबाज में 5 कम हो, या इन 5 की कमी के सबब से तमाम शहर को नेस्त कर देगा। इसने कहा, अगर वहां मुझे 45 भी मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर इसने कहा कि शायद वहां 40 मिले, तब इसने कहा मैं इन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर इसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। इसने कहा, अगर वहां मुझे 30 भी मिले तो मैं तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर इसने कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जरूरत की, शायद वहां 20 मिले। इसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नेस नहीं करूंगा। तब इसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो, मैं एक बार और कुछ अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। इसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नेस नहीं करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये मजादला जो है वो अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह से एतमाद, नाज, दर्दमंदी, हमदर्दी, प्यार, ये सारे पहलू जो है वो समेटे हुए है ना। हत्ता के हमारी जबानें और हमारे कलम जो है इसकी तासीर और इसकी तशरी और ताबीर करने से कासिर हैं। तो इसीलिए उनके झगड़े के बारे में कि जब कुरान में ये मिल रहा है, वजा अतुल बुशरा युजादिलुना फी कौम लूत, तो उन्होंने कौम लूत के बारे में अल्लाह ताला से किया। अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना इब्राहिमा लहलीमुन अवाहुम मुनीब। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है वो इन अल्फाज में तारीफ करते हैं कि दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े ही हलीम, नरम दिल आदमी थे और हर हाल में अल्लाह की तरफ जो थे वो रुजू करने वाले थे। एक होता है ना कि कोई शख्स को अपने घर में अपनी जात, अपने बच्चों के साथ सुकून होना चाहिए, बाकी फिर कुछ भी होता रहे, वो लोग बड़े बेनियाज से हो जाते हैं ना। कुछ लोग होते हैं किसी का दर्द भी नहीं देख सकते, किसी को गम मुसीबत परेशानी में नहीं देख सकते। तो ये हाल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और यहाँ पे झगड़े का लफ्ज ये बताता है कि एक तो ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ताल्लुक कैसा था, दूसरी ये बात कि वो कौम जराइम की हद से गुजर चुकी थी तो ही अल्लाह ने फरिश्तों को अजाब के लिए भेजा ना। इसके बावजूद भी बार बार कहते हैं कि जरा सी अगर उनमें भलाई है, थोड़ी सी उनको मोहलत दे दे, शायद कि वो भलाई जो है वो फल ले आए, शायद कि वो लोग जो है वो संभल जाएं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हलीम का है, बहुत ही जो है वो हलीम के मानी क्या है, बुर्दबार, मुतहम्मिल, मुतहम्मिल मिजाज। दूसरा अल्लाह ताला अवाहुन, ये आह से मुबालगे का सीगा है, कसरत से आहें भरने वाला, आह आह करने वाला, निहायत दर्दमंद, निहायत गमखार, साहिबे सोजो दिल। अब आप देखेंगे, और ये नरमी भी किस कौम के बारे में है जो अल्लाह की नाफरमानी में हद से गुजर गई, है ना। आमतौर पर अच्छे लोगों के लिए हम हमदर्दी रखते हैं, जो बुरे लोग होते हैं ना उनके लिए हमारे दिल सख्त होते हैं। हत्ता के औलाद के मामले में भी हम जो नेक नहीं होते या अच्छा मामला नहीं करते तो दिल सख्त होने लगते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आप मामला ये देखें कि वो एक ऐसी कौम जो बद कौम थी उसके मामले में भी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मोहब्बत करने वाले हैं। फिर आप देखें कि सूरत अंकबूत में हमें इसकी जो है वो मजादले की तफसील पता चलती है। सूरत अंकबूत आयत 31 से आप देखें कि वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहिम बिबुशरा कालू इन्ना मोहलिकू अहले हाजिल करिया इन्ना अहलहा कानू जालिमीन काला इन्ना फीहा लूता कालू नहनु आलमु बिमन फीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इमराअता कानत मिनल गाबिरीन। तो आप यहाँ पे भी देख लें कि उनका जो है उनसे झगड़ा करना और फरिश्तों का ये बताना कि ये चूंकि गुनाहगार हैं इसलिए हम इनको जो है वो हिलाक करने वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि या इब्राहिम आरिदन हाजा के इब्राहिम इससे बाज आ जाओ, जैसे कि अब तुम्हारी ये सिफारिश कबूल नहीं हो सकती, बस अब बहुत हो गई है इब्राहिम, अब बस करो। इसका क्या मतलब है कि अब तेरे रब के का हुक्म जो अजाब का हुक्म है ये आ चुका, अब ये अजाब कोई नहीं इनसे टलने वाला। अल्लाह ताला ने एक तरफ उनकी दुआ और इल्तजा की तारीफ की है ना, साथ ही ये भी बता दिया कि ए इब्राहिम दुआ और सिफारिश का वक्त तो गुजर चुका, अब नहीं, अब तो मेरा जो फैसला है वो आकर रहेगा। क्यों? इन्नहू कद जाए अमरु रब्बी का, कि जब तेरा रब का हुक्म हो जाता है, तेरा रब का हुक्म जो है वो पूरा होने का वक्त आ जाता है, फिर क्या होता है वह इन्नहुम आतीहिम, तो वो इन लोगों पर आकर रहता है कि अजाब जो है फिर लोगों पर आकर रहता है। अजाबुन गैरो मरदूद, ऐसा अजाब जो किसी के फेरे से फिर नहीं सकता। तो आप देख लें कि एक तरफ जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब अजाब आएगा, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उस अजाब को कोई हटा नहीं सकता। तो यहाँ पे जो अहले मक्का थे उनको भी समझाया जा रहा है। क्या बात समझाई जा रही है? आप देखिए पिछली कौमों के वाकयात में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने पढ़ा कि अजीमुल शान पैगंबर अपनी आंखों के सामने अपने जिगर गोशे को डूबते हुए देखता है, तड़प कर अल्लाह से दुआ करता है कि इसके बेटे को बचा लिया जाए, तो सिफारिश कोई काम नहीं आती बल्कि उल्टी डांट पड़ जाती है। इसके बाद अब दूसरा मंजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिखाया जा रहा है कि एक तरफ अल्लाह ताला कि इन पर रहमतें बहुत हैं, बेपनाया अनायात हैं, निहायत प्यार का अंदाज है, अल्लाह ताला उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ साथ ही अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंसाफ के मामले में दखल देते हैं तो इनके इसरार इल्हा और इनकी मिन्नत समाजत के बावजूद अल्लाह ताला मुजरिम कौम के मामले में इनकी सिफारिश को रद्द कर देते हैं। क्या कहते हैं? वइन्नहुम आतीहिम अजाबुन गैरु मर्दूद। अब पैगंबर की सिफारिश भी आने वाले अजाब को टाल नहीं सकती, रोक नहीं सकती। तो असल बात फिर यही है कि वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं अल्लाह ताला जो है उनको चुटकियों में उस कौम को उड़ा देता है, लम्हों में, है ना। तो ये है कि फिर ऐसी बस्तियों का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सी आबिहिम, और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो यहाँ पे आप देखें कि अब जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने के बाद फरिश्ते जो हैं वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जो है वो आ गए हैं, और लूत अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों को देखा सी आबिहिम बहुत ही जो है वो इस पर जो है वो घबराए, वदा का बेहिम जर अन, और तंग हुए अपने दिल में। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों की आमद पर पहले क्या था, सिया बेहिम गमगीन हुए, परेशान हुए, घबराए, वदा का बेहिम जर अन, और दिल ही दिल में जो है वो कुढ़ने लगे। वकाल हाजा यौमुन असीब, और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है। क्यों? इस उनकी परेशानी की वजह यह थी कि जो फरिश्ते حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور فرشتے ایسے تھے، مطلب وہ انسان ایسے تھے کہ خوبصورت نوجوان، نہ داڑھی ہے نہ کوئی اور بال ہیں، نوجوان ہیں، اور وہ اپنی قوم سے بھی واقف تھے کہ میری قوم کے اخلاق اور کردار کا معاملہ کیسا ہے، کہ یہ مہمان جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے دل میں گھٹن پیدا ہونے لگی، کئی طرح کے خطرات ان کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے، اور سب سے بڑا خطرہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کی بدکاری کو جانتے تھے، اپنی قوم کا جو برا مرض تھا کہ وہ مردوں کے پاس مرد جاتے تھے وہ اس سے خوب واقف تھے، اس لیے جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن میرے اوپر بڑی ہی مصیبت کا دن ہے، کہ یہ ہیں نوجوان اور خوبصورت اور ہیں میرے مہمان، اور اب پتہ نہیں کہ جو ہے میری قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَجَاءَهُ قَوْمَهُ، اور آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ قوم کے ان کی لوگ جو تھے وہ برائیاں کرنے کے عادی تھے، کانو یعملون السیئات، وہ کیا کرتے تھے برائیاں، فعل مضارے سے پہلے کانو آ گیا نا تو یہ کنٹینیوس ٹینس میں تبدیل ہو جاتا ہے، استمراری بن جاتا ہے، ماضی استمراری، فعل مضارے کے شروع میں جب کان آتا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے، اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ سورت ہجر آئی 72 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ تیری قسم بے شک وہ لوگ نشے میں اندھے ہو رہے تھے، یعنی برائی کا اور برے کام کا جو ان کو عادت تھی اور اس کا جو نشہ تھا، تو اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس کی جو ہے وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ جیسے کوئی اندھا نہیں ہو جاتا کہ اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا، نہ ماں کی تمیز باقی رہے، نہ بیٹی کی تمیز باقی رہے، کچھ بھی تمیز باقی نہیں رہی، اور وہ لوگ جو تھے وہ کیا کرنا چاہتے تھے، برائی کرنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی قوم کا کے اخلاق جو ہے وہ حد سے گزر جائے، یعنی اس کو بگاڑ آ جائے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مہمان ہیں اور ہم ان کے سامنے ان کو جو ہے وہ ذلیل نہ کریں، ہے نا. اور ایک طرف یہ کہ ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، دوسری طرف یہ قرآن یہ تصویر پیش کرتا ہے کہ وہ برائیوں کے عادی تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے اپنے مہمانوں کو ان سے بچانا بڑا ہی مشکل تھا. قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، کہنے لگے یہ ہیں میری بیٹیاں اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، بس کچھ اللہ کا خوف کرو، ولا تخذوني في ضيفي، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، ان کو تو یہ پتا تھا کہ یہ نوجوان ہیں اور مہمان کے طور پر میرے پاس آئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مہمان کی عزت کی حفاظت کرنا، مہمان کی حفاظت کرنا، اگر کوئی کسی کے گھر مہمان بن کر جائے اور گھر والوں کی، میزبان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں، کوئی دوسرا آ کے اس کی وہاں بےزتی نہ کرے، اس کا پرس، اس کی چیزیں، یا اس کی عزت پر حملہ، یا کوئی اور آ کے اس کو گالیاں دے جائے، تو یہ نہیں. تو مہمان کی عزت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. تو اب اسی لیے وہ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور چونکہ ان کو اپنی قوم کا حال پتا تھا تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی خواہش نفس کو پورا ہی کرنا ہے، اس کی تسکین ہی کرنی ہے، تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا یہ میری بیٹیاں جو موجود ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں پیغمبر جو ہے وہ قوم کے اندر باپ کی اس کی حیثیت ہوتی ہے. اس کے لیے سورت احزاب کی آیت نمبر 6 ہے دلیل کے لیے، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ امت کی جو ہیں وہ مائیں ہیں. تو نبی کیا ہوا پھر امت کے لیے؟ باپ کی اس کی حیثیت ہے. تو کیا مطلب تھا آپ کا یہ کہنے کا کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات کہی کہ نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو، اور بعض کہتے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ موقع کی نزاکت سے انہوں نے فوراً یہ بات کی کہ قوم کے اندر بیٹیاں موجود ہیں تو ان سے نکاح کر کے تم اپنی خواہش جو ہے وہ پوری کرو، اور ولا تخزونی فی دیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو کہ مہمان آئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایک جملہ جو ہے ان کے نفس کی پوری تصویر کو کھینچتا ہے کہ وہ کتنی برائی میں ڈوب چکے تھے، اور جہاں ان کو جو ہے وہ پاکیزگی نظر آتی تھی، ان کی رغبت اور دلچسپی جو تھی وہ پاکیزگی یا اچھے طریقے سے کھانے سے نہیں تھی بلکہ کیا تھی؟ گندگی سے تھی. آپ دیکھیں جو گندگی کے کیڑے ہوتے ہیں اگر آپ صاف ستھرے پانی میں ان کو لا کر ڈال دیں وہ مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو گندا رہنے کی، گندے ماحول کی جو ہے وہ عادت ہو جاتی ہے. تو یہ ان کے بھی اخلاق کا زوال تھا، ان کے نفس کی بگاڑ کی انتہائی تھی، انتہا تھی، انتہائی مرتبہ تھا ان کے نفس کے بگاڑ کا. تو اب جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ حلال کے ہم عادی نہیں، حرام جو ہے نا ہم تو اسی کو کھانا چاہتے ہیں، تو ہم تو سدھر ہی نہیں سکتے، ہے نا، طیبات جو ہیں وہ تھوڑی ہمیں چاہیے. تو اصل بات کیا ہے کہ اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں لنا فی بناتی کا من حق، تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، لقد علمتا، تجھے تو پہلے یہ بات پتا ہے ہماری عادت، ہماری برائی کی انتہا، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ برے لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، گھر میں گھس آئے ہیں اور لوط علیہ السلام مہمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ان کی اتنی بری حرکتیں ہیں کہ اس کے بعد جو ہیں وہ پورا بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ تمہیں خوب پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور حلال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اور وہ بار بار ان کا یہ پوچھنا کہ کیا تم میں کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، کوئی بھی نیک آدمی، کوئی بھی اچھا، کوئی بھی تمہیں سمجھانے والا. بعض اوقات شریفوں کو کوئی بھی جینے نہیں دیتا نا، گھر کے اندر بھی نہیں رہنے دیتا. کالا جو ہے لو ان لی بکم قوتن، پھر لوط علیہ السلام کہتے ہیں کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، کہ تمہیں جو ہے وہ میں کیا کرتا کہ سیدھا کر دیتا، او آوی یا میں پناہ لے لیتا، الا رکن شدید، مضبوط سہارے کی طرف، کاش کہ میرے پاس اتنی قوت ہوتی، یا میں کسی سے مطلب کوئی مجھے مدد ملتی، کوئی جتھا، کوئی میری قوم کے لوگ. جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں تھے نا، تو بالکل ہی جیسے کہ وہ تنہا تھے، کوئی ان کا جو ہے وہ ساتھی نہیں تھا. تو عاجز ہو کر اس وقت حضرت لوط علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم کا خود مقابلہ میں کیسے کروں، کوئی جتھا، کوئی جماعت ہی نہیں جو ان ظالموں سے مجھے نجات دے دیتی. لو ان لی بکم قوت، تو لو جو ہے نا یہ کاش، اے کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی. قوت کس چیز کی؟ کوئی جتھا، کوئی فوج، کوئی جماعت. او آوی الی رکن شدید، یا مجھے کوئی مضبوط سہارا ہی مل جاتا کہ میں اس کی پناہ میں چلا جاتا، کہ اپنے آپ کو، مہمانوں کو بچا لیتا. قالو یا لوتو، اب بولتے ہیں فرشتے کہ اے لوت، انا رسول ربی کا، ہم بے شک رسول ہیں. کون؟ یعنی فرشتے. تب فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. لن یصلو الیکا، یہ ہرگز جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الیکا تیرا، کہ یہ لوگ جو ہیں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے وہ فرشتے ہیں. تو اب جو ہیں جب وہ لوط علیہ السلام کو پریشان دیکھتے ہیں اور قوم کی خباثت کی انتہا دیکھتے ہیں، تو فرشتے بول اٹھتے ہیں کہ لوط، آپ فکر نہ کریں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اب یہ لوگ تمہیں کچھ بھی نقصان جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد جو فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ جگہ بٹھایا اور صرف اپنا بازو تھوڑا سا ان ملونوں کی طرف بڑھایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھاگو یہاں سے، یہ لوط علیہ السلام کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ تو ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ کیا کہا کہ لن یصلوا الیک، کہ اب یہ تیری طرف جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، فاسری پس رات کو چلیے، باہلک اپنے گھر والوں کو لے کر۔ گھر والوں سے مراد کون ہے؟ ایمان لانے والے، کہ آپ جو ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کر جو ہے وہ رات کے وقت، بقطع من اللیل جب رات کا کچھ حصہ باقی رہے تو آپ چل پڑیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک مگر تیری بیوی۔ کیا مطلب؟ کہ تیری بیوی نہیں ساتھ جائے گی، اور بقطع من اللیل یعنی اور رات کے وقت چلنا۔ سورت قمر آیت 34 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سحری کا وقت تھا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نجیناہم بسحر، کہ ہم نے ان کو جو ہے سحری کے وقت جو ہے، صبح کے وقت جو ہے وہ نجات دی۔ ایک قوم پر سحری کے وقت جو ہے وہ عذاب آیا، اور لوط علیہ السلام اور باقی جو ان کے ساتھی تھے ایمان لانے والے، ان کو جو ہے وہ بچا لیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے علاقے سے نکل جاؤ۔ تو جب قوم پر عذاب آئے گا، پیچھے سے دھماکوں کی آواز، شور کی، چیخنے کی، چنگاڑ کی، تو ایسا نہ ہو کہ سن کر تم راستے میں ٹھہر جاؤ، اور جو رقبہ، جو علاقہ عذاب کے لیے جو ہے نامزد کر دیا گیا ہے، اس میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد پھر تم میں سے کوئی رک جائے اور اس پر بھی پھر عذاب آ جائے نا، تو اس جگہ سے تم لوگ جو ہے وہ نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پورا پروگرام بتایا کہ رات ہونے کے بعد نکل جانا، کیونکہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا، اور صبح ہونے میں بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے، لہٰذا جلدی سے جلدی نکل جائے، اور دیکھو اپنی بیوی کو نہیں ساتھ لے کے جانا۔ کیوں؟ الا امرأتک، تیری بیوی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ انہ مصیبہا ما اصابہم، انہ وہ جو عذاب آنے والا ہے نا، انہ وہ عذاب، مصیبہا وہ اس پر آ کر تیر نشانے پر لگے گا، اس کو وہ پہنچے گا۔ ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا، کن کو؟ قوم کے لوگوں کو، جو دوسری قوم پر گزرنا ہے وہ تیری بیوی پر بھی جو ہے وہ گزرے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا نا عذاب کا، وہ کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت جو ہے وہ ان پر عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ اچھا، بیوی جو ہے اس پر کیوں عذاب آیا؟ کہتے ہیں کہ بیوی جو تھی اس نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیا، اور بیوی جو تھی جب فرشتے آئے تھے نا لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر، تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو تھی نا، اس نے رومال ہلا ہلا کر قوم کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہمارے گھر یہ مہمان آ گیا نا، تو قوم جو ہے وہ بھاگتی بھی ان کے گھر جو ہے وہ چلی آئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور یہ گفتگو اس شریر قوم سے پس پردہ ہو رہی تھی، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے، ان لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس پر لوط علیہ السلام کی زبان پر جب یہ کلمات آئے، جب انہوں نے ان کو سمجھایا اور دروازہ مطلب ان کو جب یہ ساری بات جو ہے انہوں نے ان کو سمجھائی، تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کا جب یہ مطلب دیکھا حال بے چینی، تو حقیقت کھولی اور کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اور وہ تھا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو ذرا سا ہلایا اور یہ لوگ اندھے ہو گئے اور پھر بھاگنے لگے نا۔ تو اس سے جو ہے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا قوم کو، بعض کہتے ہیں اشارے سے بتایا تھا قوم کو، کیونکہ بیوی نے پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے कोई भी लीडर है, कोई भी जमात का रहनुमा है, कोई भी जिम्मेदार है, उसके घर वाले जो है ना वो खाइन नहीं होने चाहिए। उसके घर वालों को चाहिए कि वो अपने जो भी रहनुमा है, घर का सरबरा है, उसका जो है वो साथ दें, और जो भी ईमानते हैं ना उसमें कोई भी कमी बेशी ना करें। क्योंकि बाज औकात जो है वो घर के अंदर बीवियां अगर ऐसी हो ना कि शोहर जिम्मेदारी पर है और बीवियां और घर वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि जो भी ऐसी बातें हैं ना उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, जो ईमानदार ईमानत की बातें हैं, जो कौम के राज होते हैं, तो उससे जो है वो पूरी कौम जो है वो उसका जो है वो नुकसान होता है। तो अब आप देख लें कि ये तीसरा वाकया है कि पैगंबर जो है वो अपनी बीवी को जो है वो ना बचा सका, है ना। तो कोई बुजुर्ग जो है वो कैसे बचा सकता है। और सूरत तहरीम में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लूत अलैहिस्सलाम की और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, इन्होंने क्या किया था। कानता तहता अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन हैनी फखानताहुमा फलम युग्निया अनहुमा मिन अल्लाहि शैय वकील अदखुलन नार मअ अद्दाखिलीन। तो क्या गुनाह इनका यहाँ पता चल रहा है, फखानताहुमा, कि उन दोनों ने खयानत की। और खयानत का मतलब क्या है कि उन्होंने जो है वो अपने पैगंबर जो उनका शोहर था उनका साथ देने की बजाय कौम का साथ दिया। और खयानत से मुराद क्या है कि अपने खावंदों पर ईमान ना लाई, निफाक में मुब्तिला रही, इनकी हमदर्दियां काफिर लोगों के साथ रही। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये कहती थी कि ये तो मजनू है, लोगों को बताती थी ये दीवाना है। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी कौम को घर में आने वाले मेहमानों की इत्तला पहुंचाती थी, और बास कहते हैं कि ये अपने शोहरों की चुगलियां खाती थी, है ना। तो साथ ना दिया, तो ये है इनका गुनाह। तो इसलिए कहा गया कि इसको भी अजाब पहुंचने वाला है। तो इससे फिर ये बात भी पता चलती है कि बीवियों को, यानी घर के अंदर जो बातें होती है ना वो घर के राज होते हैं, और पेट का बहुत हल्का नहीं होना चाहिए, सब्र होना चाहिए एक दूसरे के लिए। जिस्म और लिबास की जो मिसाल कुरान ने मियां बीवी के लिए दी है, तो बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और साथ देना चाहिए, और जो है शुक्रगुजार बनना चाहिए अल्लाह का और फिर अपने शोहरों का भी। उसकी वजह से, उनकी वजह से औलाद मिली और घर मिला, इज्जत मिली, सोसाइटी में मुतारिफ हुए, और उसके बाद फिर औलाद को भी ये सिखाया जाए कि बाप की इज्जत ना करो, और बीवी जो है फिर औलाद को लेके साइड पे हो जाए कि बच्चे मेरे बच्चे। तो मतलब शोहर के साथ उसने सलूक भी करना चाहिए, और जो जिनके शोहर जिम्मेदारियों पर हैं उस कंपनी या उस मुल्क या उस सूबे या उस तंजीम के जो राज है ना जो घर के अंदर हो उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अलैसा सुबहु बिकरीब, अब सुबह होने में देर ही कितनी बाकी है, और आपको पता है कि रात कितनी ही लंबी हो, कितनी ही काली हो, वो गुजर ही जाती है ना। तो इनके लिए तो अजाब का वक्त मुकर्रर था और जल्दी फिर सुबह जो है वो होनी थी। तो ये सारा जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है। फलम्मा जाए अमरुना, फिर जब हमारा फैसले का वक्त आ पहुंचा, जालना आलिया साफिलहा, ये बड़ी सख्त आयत का हिस्सा है, तो हमने इस बस्ती के ऊपर को नीचे कर दिया, तलपट कर दिया। क्या मतलब है इसका, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कहना कि हमने जो है वो इसको जो है इसका ऊंचाई जो थी उसको बिल्कुल ही नीचे कर दिया, यानी एक हिस्से को जो है उठाकर दूसरी जगह लाकर जो है ना वो रख दिया। तो आप देखिए इस सिलसिले में कि ये अल्लाह का अजाब, और अजाब भी इतना सख्त के ऊपर को नीचे कर देना और नीचे के ऊपर। तो गोया के वो लोग जो बस्ती के अंदर मौजूद थे, और ये बस्ती थी जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शहरे सदूम और आसपास की बस्तियों को, जो इन बदकारों का मस्कन था, पूरे खित्ते जमीन को उखाड़ कर अपने परों पर उठाया, फिर फिजा में बुलंदी पर ले जाकर इस खित्ते को उल्टा कर जमीन पर पटख दिया। फलम्मा जा अमरुना, तो जब हमारे अजाब का वक्त आया, जअलनाहा, हमने बना दिया आलियाहा, इस बस्ती के ऊपर के हिस्से को साफिलाहा, इसका नीचा, यानी बुलंदी पर ले जाकर इस बस्ती में बसने वाले बदकार गुनाहगार लोगों को जमीन पर पटख दिया। और दूसरा क्या किया, अम तरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने इन पर पक्की हुई मट्टी के पत्थर जो थे वो बरसाए। अब आप देख लीजिए कि ऊपर से लगातार खुलकर पत्थर बरसाए गए, जैसे कि बारिश बरसाई जाती है। और पत्थर भी कैसे थे, आम पत्थर नहीं थे, हिजारतन नहीं कहा, इतना ही नहीं कहा, हिजारतम मिन सिज्जील, बल्कि वो पत्थर जो पक्की हुई मट्टी के थे, गोया के जो पत्थर उनको मारे गए आम पत्थर नहीं थे, बल्कि वो पके हुए पत्थर थे, मजबूत। और आप देख लें कि जैसे एक किंकरी नहीं होती कि पत्थर जब पक जाता है तो बिल्कुल ही सख्त लगता है, किंकरी बन जाती है ना, तो और ही जो है वो सख्त हो जाता है। तो अब इन पर पत्थर बरसाए, पत्थरों की और सिफ्त क्या थी, सिजील के अलावा मंदूद, तह बर तह। बाज लोग इसका तर्जमा तह बर तह करते हैं, बाज मसलसल भी करते हैं, यानी तह बर तह का मतलब क्या, एक के बाद दूसरा। जैसे कभी बंदूक में आपने देखा है कभी के गोलियां, जैसे मेरे बजन फौजी थे तो हमारे घर में जैसे भाई भी, तो गन को अगर आपको देखने का इत्तफाक हुआ हो, अगर गन है घर में कि एक के साथ दूसरी गोली बिल्कुल जड़ी जुड़ी हुई होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, यानी जब वो फायरिंग को खोलते हैं तो यक के बाद दीगरे गोलियां ताबड़तोड़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये है इसका मतलब, कि ये नहीं था कि एक पत्थर आता था तो फिर बीच में फासला होता था, मसलसल एक के साथ दूसरी पे बसता था पत्थर, और मंदूद तय बरत है मसलसल। आप अजाब की कैफियत का अंदाजा करें। और फिर उसकी सिफत क्या थी, मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, तेरे रब के नजदीक वो निशान जदा था, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान जदा था। अल्लाह ताला ने हर पत्थर को ये बता दिया था कि तूने किसको जाकर लगना है और कैसे लगना है। आप सोचें कि अजाब की शिद्दत का, उसकी कैफियत का आप अंदाजा करें, क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर पत्थर को ये बता दिया था कि तूने जो है वो किसको जाकर लगना है। तो ये बस्तियां जो शाम और मदीना के दरमियान वाकिया थी, मक्का के लोग भी इसके इर्द गिर्द से गुजरते थे ना, देखते थे ना, तो यहां पर जो है इस बात का अंदाजा होता है कि अल्लाह का अजाब जो है वो कितना शदीद है और इसमें कितनी जो है वो सख्ती है। जैसे चिट लगा कर नहीं किसी को बता दिया जाए, जैसे दुम्बे हैं बहुत से और उनमें से कुछ को कुर्बानी के मौके पे जिबा करना है तो निशान लगा दिया जाए, मेहंदी लगा दी जाए कि बस इनको जो है वो जिबा करना है ना। जैसे बहुत से घर हैं और किसी घर पर कोई हमला करना चाहता है तो रात को आके निशान लगा जाए कि फलां जो निशान ज्यादा घर है ना, ताकि देर ना लगे ढूंढने में भी, उस पर जो है वो हमला कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ने अपने इल्म और अपनी कुदरत से पहले से ही जो है वो पत्थर जो थे उन पर उनको मुकरर कर दिया था, उन पर निशान लगे हुए थे कि ये पत्थर जो है ये जाकर कौम लूत पर जो है वो बरसने चाहिए। क्यों, ये वो कौम थी जो फितरत से हटकर अमल कर रही थी कि अपनी हाजत को पूरा करने के लिए मर्द औरतों के पास नहीं जाते थे, मर्दों के पास जाते थे। अमले कौमे लूत, इतना सख्त ये गुनाह है कि जो है वो इसके लिए इतने सख्त अजाब की यहाँ पर जो है वो सजा सुनाई गई। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद, और जालिमों से ये सजा कुछ भी दूर नहीं है। आप देखें सूरत हिज्र आयत 74 में अल्लाह ताला कहते हैं फजअलना आलियाहा साफिलाहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। तो वहां पे भी इसका जिक्र जो है वो हमें इस तरह जो है वो मिलता है कि उनको अजाब दिया गया और कितना सख्त जो है वो दिया गया। फिर आप देखिए कि जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कहना कि वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर कौम लूत पर इतनी सख्त सजा आ सकती है तो कोई भी कौम जो अल्लाह ताला के पैगंबर को झुठलाएगी, पैगंबर को आजिज करेगी और पैगंबर का इनकार करेगी तो उनसे सजा ये दूर नहीं है ना। तो अल्लाह ताला जब चाहे जिस पर चाहे वो सजा जो है वो भेज दे। तो गोया के ये कहने का मकसद ये है कि लोग जो है वो इबरत हासिल करें, जैसे कि लूत, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के पास से अहले मक्का जब गुजरे तो इबरत हासिल करें, इबरत की निगाह से उनको देखें कि अगर इन पर ये सजा आ सकती है तो हम पे भी आ सकती है। इससे फिर ये बात भी सोचनी चाहिए कि आज के दौर में बाज लोग जो हैं, जैसे कानून पास अगर कर रहे हैं, बाज ममालिक में कानून पास होता है और बाज मुसलमान भी उसके हक में राय देते हैं, या बाज हॉस्टलों में सुने हैं कि ये बीमारी पाई जाती है ना, और बाज वो कहते हैं शादी नहीं करवाते, और पाकिस्तान में जो है वो बकायदा अखबार में ये खबर छपी हुई थी कि एक लड़की ने दूसरी लड़की से जो है ना वो शादी कर ली, और बकायदा उसकी तस्वीरें आई हुई थी अखबार में फ्रंट लाइन पर ना। तो आप सोचें कि ये फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है कितने ज्यादा इसमें डरने की बात है ना, कि अल्लाह ताला की हदों को फांदना, अल्लाह की आयात का इनकार करना, या और फिर उन लड़कियों के बारे में मुकदमा जब किसी ने पेश किया घर वालों ने, कि तो मुसलमान राइटर उनके हक में भी लिख रहे थे, अफसोस इस बात का था। जैसे शिकागो से कोई मुस्लिम था, उसकी मैं तहरीर पढ़ रही थी कि मतलब इसमें क्या हर्ज है, ये तो मतलब कोई बात नहीं अगर वो लड़कियां ऐसा करना चाहती हैं। तो ये जो है ये अल्लाह ताला के हाँ ये अमल बहुत ही घिनौना अमल है, कबी अमल है, और जब कोई कौम फितरत से हटकर चलती है तो फिर अल्लाह ताला जो है उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। और इसके साथ ही फिर वाक्या शुरू होता है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, वाइला मदियना अखाहुम शुएबा, और मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। और आपको पता ही है कि मदियन के इलाके में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो है इनको भेजा गया, और सूरत आराफ आयत 85 में आप जो हैं मदियन के बारे में तफसील से पढ़ भी चुकी हैं कि ये कौम जो थी इसका सबसे बड़ा गुनाह क्या था और ये कैसे अमल करती थी। मदियन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे या पोते का नाम था, फिर इन्हीं की नस्ल पर मबनी कबीले का नाम भी मदियन, और जिस बस्ती में ये रहते थे इसका नाम भी मदियन पड़ गया। तो गोया के मदियन जो है ये कबीला का नाम भी है और बस्ती का नाम भी है, और ये बस्ती मदीना के रास्ते में मान के करीब है। इन्हीं को कुरान दूसरे मकाम पर असाबुल ऐका के नाम से भी याद करता है, बन के रहने वाले, जंगल के रहने वाले, और इनकी तरफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर जो है वो भेजा गया। और हर नबी जो है उस कौम का जो है वो भाई होता है, क्यों, उसी कौम और कबीले का फर्द होता है। कहीं अल्लाह ताला कहते हैं रसूलम मिन हम, कहीं कहते हैं कि रसूलम मिन अनफुसेहम, तो बात एक ही है कि अल्लाह उन्हीं लोगों में से कौम में से एक फर्द को जो है वो अपने रसूल के लिए जो है वो चुन लेता है। तो यहाँ पे भी वाइला मदियना अखाहुम शोएबा, के कौम का भाई, कौम ही में से एक फर्द जो था शुएब अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा। काला या कौमी, उन्होंने कहा ए मेरी कौम, ओ बुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, क्या मेरी कौम एक अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो अब आप देखें कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और शिर्क से मना किया, और ये हर पैगंबर की दावत का बुनियादी और पहला जुज है। दूसरी बात क्या कही, वला तनकुसुल मिकियाला वल मीजाना इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन मुहीत। दूसरी बात ये कही, और नाप तोल में कमी ना करो, क्योंकि हर कौम की कुछ बुराई होती है ना, जैसे कौम लूत की बुराई आपने देख ली कि वो जो थे वो अता तू नर रिजाला मिन दून निसा, औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ आते हो, तो इनकी बुराई क्या थी कि शिर्क में तो ये मुब्तिला थे ही, दूसरी बड़ी बुराई ये थी कि तिजारत के अंदर ये डंडी मारते थे, नाप तोल में ये कमी करते थे। तो इसकी इसलाह के लिए जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया, और उन्होंने जाते ही एक पॉजिटिव काम दिया, मुस्बत, एक अल्लाह की इबादत, शिर्क नहीं करना, एक अल्लाह की इबादत। दूसरी बात ये कही कि नाप तोल के अंदर जो है वो कमी नहीं करनी। साथ ही कहा इन्नी अराकुम बिखैरिन, के आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूं, तुम नाप तोल में कमी क्यों करते हो, तुम तो खैर में हो। खैर से मुराद क्या है, खैर से मुराद जो है खुशहाली, क्योंकि तौहीद की दावत देने के बाद जो इखलाकी खराबी इस कौम के अंदर पाई जाती थी, नाप तोल की कमी, नाप तोल की कमी उनका मामूल बन चुका था। इंसान नाप तोल में क्यों कमी करता है ना, कि बड़ी मुश्किल है, परेशानी है, गुजारा, या फिर ये कि उसकी आदत ही बन जाती है। अच्छे दिन होते हैं, खुशहाली भी होती है, तजारत उरूज पर पहुंच जाती है, फिर भी वो नाप तोल में कमी करता है। तो वो साथ ही उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे कोई बुरे दिन भी नहीं है, तुम अच्छे हाल में हो और अल्लाह तुम पर अपना फजल कर रहा है। खैर से मुराद अल्लाह का फजल, यानी अल्लाह ने तुम्हें आसूदगी, मालो दौलत से नवाजा है, फिर तुम ये हरकत क्यों करते हो? तो इसका ये मतलब है, इसका ये नहीं मतलब कि अगर अल्लाह का फजल ना हो तो फिर नाप तोल में कमी कर सकते हैं। यानी अल्लाह का फजल मौजूद है तो फिर क्यों करते हो? यानी एक होता है ना कि कोई शख्स चोरी करता है, भूखा है, घर में भूखे मर रहे हैं, तो चलो चोरी की, भूख भी नहीं है और कोई चोरी करे तो और ही शर्मिंदगी की बात है ना। तो गोया वो एक तरह से उनको ये बात समझा रहे थे, इसका ये नहीं मतलब जो भूखा मरे तो चोरी करनी शुरू कर दे। जाहिर है उसको रिज़्क़े हलाल के लिए उठना है और उस तलाश जो है वो करनी है। तो यहाँ पर वो दो बातें उनके सामने रखते हैं, एक तो ये कि जब अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, इन्नी अराकुम बिखैर, खुशहाल, फजल, दौलत की रेल पेल, फसलें, सब कुछ, तो होना तो ये चाहिए कि तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। क्योंकि जब अल्लाह किसी कौम पर खुशहाली के दरवाजे खोल देता है, वो कौम बड़ी मालदार हो जाती है, तो कौम को अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए, ना ये कि वो कौम ना शुक्री करे फिर अल्लाह का अजाब उस कौम को आके घेर ले, है ना। तो ये था उनका समझाना। और ये बात भी आप याद रखिएगा कि दो तरह की बीमारियां होती हैं ना, एक जिस्मानी बीमारी और एक रूहानी बीमारी। रूहानी बीमारी जो है वो है शिर्क, उम्मुल अमराज, और जिस्मानी बीमारी को जो है ना वो कब्ज को कहते हैं, उम्मुल अमराज, के कब्ज की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह शिर्क की वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो अब चूंकि वो मुशरिक थे, वो शिर्क करते थे, जिसके नतीजे में वो तजारती कारोबार में बेईमानी करते थे, है ना। और अब यही इनका हदफ था शुएब अलैहिस्सलाम का कि मेरी कौम के लोग इस जो बेईमानी है इसको छोड़ दें। और अहले मदियन जो थे ये दो शाहराओं के चौक में रहते थे, दो बड़ी शाहराह इनके साथ मिलती थी, जिसकी वजह से इनका इलाका एक अहम तजारती मरकज था। ये सिर्फ नाप तोल के पैमानों में हाथ की सफाई नहीं दिखाते थे बल्कि और भी बदयानती करते थे, है ना। नाप तोल में कमी करना, जैसे आप देखें कि आज उम्मत मुस्लिमा जो है वो भी नाप तोल में कमी करती है ना, कि जैसे आज देखें आजकल आटा ही कितना महंगा हुआ हुआ है। तो अब आटा वो ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं है, गंदम तो खुद पाकिस्तान सप्लाई करता है दूसरे ममालिक में, और गंदम की जखीरा अंदोजी कर दी, गंदम को छुपा दिया, आटे को छुपा दिया, तो कौम जो है एक बुहरान का शिकार हो गई, है ना। और इसी तरह आप देखें कि मसालों को में मिलावट करके फिर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्या फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। दूध में पानी मिलाया जाता है ना, ऑयल के अंदर मिलावट कर दी जाती है, तो खालिस चीजें जो है वो नहीं मिलती। शहद जो है वो खालिस नहीं मिलता, तेल खालिस नहीं मिलता, मसाले खालिस नहीं मिलते। हत्ता कि ये मिलावट जॉब के अंदर भी है कि टाइमिंग में कमी कर देना, कि जॉब करने वाले 9 की बजाय 11 बजे जाएंगे और 9 बजे लिख देंगे, है ना, 2 बजे घर आ जाएंगे 4 बजे लिख देंगे। तो ये कमी बेशी जो है वो क्या है कि ऑफिस के औकात में भी है, चीजों के इस्तेमाल में भी है, कि ऑफिस की चीजों को घर में उसका इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरह चीजों को खालिस ना देना उस कौम में भी थी और उम्मत मुस्लिमा में आज जो है पाई जाती है। फल सामने कुछ रखे हुए होते हैं और अंदर से गले सड़े फल अंदर डाल दिए जाते हैं, या कपड़ा जो है साफ सुथरा ऊपर रख दिया जाए, धब्बों वाला है, कुछ फटा है, खराब है, तो अंदर कपड़ा माप कर दिया तो वो मीटर जो था वो गज बन गया, है ना, थोड़ा सा उसके अंदर कमी कर ली। तो ये चीज क्या है, ये अल्लाह के अजाब की वजह बन सकती है। अल्लाह ताला कहते हैं, वा इन्नी अखाफु अलैकुम अजाब यौमिन मुहीत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को क्या कहते हैं कि मुझे ये डर है कि कहीं तुम पर ऐसा अजाब ना आ जाए। इतना ही काफी था कि तुम पर एक दिन अजाब आएगा, यौमिन मुहीत, जो हर तरफ से अहाता कर लेगा। बाजू का तूफान, मुसीबत, परेशानी, अजाब जब आता है ना तो लगता है कि सारी दुनिया मेरे मुखालिफ हो गई है, हर तरह से अजाब जो है वो सराउंडिंग कर लेता है, पीछा कर लेता है, फॉलो करता है, पकड़ लेता है, और इंसान जो है वो किसी तरह उसको समझ नहीं आती कि बचूं तो बचूं कैसे, जाऊं तो जाऊं कैसे। है ना, पिछले दिनों एक औरत का फोन आया और कह रही थी कि हमारे यहाँ चूंकि जो है वो माल हमारे यहाँ रिस्क हलाल नहीं है, इसकी वजह से हर चीज में नुकसान हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि किसी तरह हम इस सूद से बाहर निकलें, कि घर भी छोड़ दें और जो सूद की चीजें हैं उसको हम छोड़ दें, हराम पैसा हमारे अंदर शामिल हो रहा है तो हमारे रिस्क में बरकत खत्म होती जा रही है। तो ये भी एक हकीकत है कि बाज़ औक़ात इसकी वजह से जो है ना जो है वो ये भी अल्लाह का एक अजाब है जो दुनिया में आ जाता है कि बरकत ही छीन ली जाती है, और जो है वो इंसान बड़ी मुसीबत और परेशानियों में जो है वो चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये मेरे खिलाफ ऐलान जंग है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ सूद का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे भी वो अपनी कौम को समझाते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कि मुझे ये डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा, हर तरफ से अहाता कर लेगा।